ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक कायाकल्प और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आज वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डैम सिंडी कीरो की उपस्थिति में आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति गवर्नर जनरल डैम सिंडो कीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री विंसन पैत्रेस के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। बाद में वे पीकीहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति गवर्नर जनरल द्वारा आयोजित राजकीय भोज में भी शामिल होंगी। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3 से 4 दिनों के भीतर हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़ और हिंसा हत्या की धमकी मिले तो वे निकटतम सैन्य शिविर से संपर्क करें। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया है। कल विधेयक के पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया संपन्न हो गई। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के खर्चों की भरपाई के लिए नागरिकों पर कोई कर नहीं लगाया गया। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को हटाना भी एक बड़ी राहत है। वहीं राज्यसभा में कल विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज चर्चा पर जवाब देंगी। केंद्र सरकार ने 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सभी श्रेणियों के लिए पुरस्कार 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया है और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने कल रात एक बयान में ये जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू पदक से चूक गई। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता चानू कुल 199 किलोग्राम का वजन उठाकर चौथे स्थान पर रहीं। पुरुषों के ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन मैच में प्रवीण चित्रवेल और अब्दुल्ला फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। प्रवीण चित्रवेल अपने ग्रुप में 12वें और अब्दुल्ला अपने ग्रुप में 13वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारतीय धावक ज्योति आराची 13.16 सेकंड का समय लेकर 7वें स्थान पर रहीं। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम पदक के लिए मैदान में उतरेगी। टोक्यो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पेरिस में भी वही इतिहास दोहराने की कोशिश करेंगे। भारतीय समयानुसार फाइनल रात 11:55 पर शुरू होगा। पुरुष हॉकी टीम वर्ष 1972 के बाद पहली बार लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने की उम्मीद में शाम 5:30 स्पेन के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।